श्रीमद् भगवद गीता यथारूप क्या हो गया, क्या चल रहा। श्लोक क्रमांक 3 अध्याय 17। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव सः। अगर आप देखें तो बिल्कुल हिंदी की तरह है कि नहीं श्लोक। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, सभी की श्रद्धा सत्व के अनुरूप होती है। हमारे आगरा से आए हुए केशव प्रभु, सत्व का अर्थ क्या है कृपया भक्तों को माइक में बताएं, बोलिए। चार पॉइंट होते हैं सत्व में, सत्व में से चार पॉइंट में से एक पॉइंट बताइए। सत्व क्या सा, सत्व का मतलब क्या समझते हैं? ऑन कर लीजिए माइक को। यस,
सत्व का अर्थ होता है कि जैसे
मन, जैसे नहीं केवल सत्व का अर्थ है चार चीजें, बोलिए।
मन
और
बुद्धि
और
अहंकार
और
चेतना,
चित्त। तो इसके अनुसार हमारी क्या होगी?
स्वभाव,
उसके हमारा स्वभाव होगा, उसी के अनुसार हमारा श्रद्धा हो जाएगी। स्पष्ट है बहुत ईजी। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यः श्रद्धा स एव सः, जैसी जिसकी श्रद्धा होती उसी के अनुसार उसको बोला जाता है। सिंपल, बहुत सिंपल अर्थ है कि नहीं श्री श्रीनाथ प्रभु, समझ में आ रहा है? तो श्रद्धा किसके अनुसार होती है? सत्व के अनुसार। यस, और सत्व का अर्थ है मन बुद्धि अहंकार चित्त। बहुत इजी है, ठीक है। सत्व अनुरूपा अस्तित्व के अनुसार सर्वस्य सबों की। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई देहधारी के पास श्रद्धा नहीं होगी, सर्वस्य से यह समझ में आता है। हर व्यक्ति श्रद्धा से समन्वित है, चाहे वो गुणीभूत श्रद्धा या फिर त्रिगुणात्मक, मतलब त्रिगुण से पार श्रद्धा। एक और बात इंपॉर्टेंट है, अभी आ जाएगा टीका में भी, कि जो शास्त्रीय श्रद्धा है वह व्यक्ति के अधिकार पर भी निर्भर नहीं करती। कोई घोर तमोगुणी हो सकता है और वो हरे कृष्णा करना शुरू कर सकता है भक्तों के संग से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि मरगारी था, जैसे कि रत्नाकर थे, वो घोर तमोगुण में थे लेकिन भगवत भक्तों के संग से उनको शास्त्र में श्रद्धा होगी, नाम में श्रद्धा होगी, करना चालू कर दिया। आप देख सकिए रत्नाकर की ये हालत थी कि राम नहीं बोलता, मरा मरा बोल रहा था। तो हम उधार लेते हैं श्रद्धा एक तरह से, अगर ऐसे कहा जाए, गुरु से वैष्णव से उधार लेकर के फिर उससे अपना बिजनेस चालू करते हैं। किसी पर पैसे नहीं होते ना तो उधार ले लेता है। उसी प्रकार से गुरु वैष्णव से हम उधार लेकर के, इस चीज को भगवान गीता में कहते हैं कि जो लोग सुनते हैं शास्त्र, पढ़ते नहीं है, सुन लेते हैं, सुन करके भगवान की भक्ति करने लगते हैं। तो श्रुत्वा श्रुति परायणा मतलब सुन ले रहे हैं, भगवान की भक्ति करने लगे, वो भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये श्रद्धा, ये तो गुणों के संग से हो रही है, लेकिन किसी भी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति है अगर भगवत भक्तों का संग हो गया तो शुद्ध हो जाएगा। अब आपको डाउट हो रहा है इसमें? कुछ श्लोक याद आ रहा है भगवत भागवतम का? किराट उलंद पुलंद पुलकशः अभीर यवना खसादया ये नेच पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कितनी भी बुरी हालत हो उसकी, कितना भी बुरा सत्व हो, भक्त संग करके वो शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो शास्त्रीय श्रद्धा है उस पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। श्रद्धा मत, श्रद्धा श्रद्धा या निष्ठा भवती हो जाती है भारत, हे भरत पुत्र, श्रद्धा श्रद्धा मयः से युक्त अयम यह पुरुष, सॉरी पुरुषः जीवात्मा, यह जो यत जिसके होने से श्रद्धा श्रद्धा सह इस प्रकार एव निश्चय ही सह वह। हमारे मधुशेष प्रभु पढ़िए अनुवाद, माइक पे पढ़िएगा।
हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है।
इस लाइन को अगर आप देखें तो हमारे भक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए भगवान आगे बताएंगे क्या खाना है, क्या करना है, क्योंकि अगर हम जिन गुणों का संग करेंगे उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा होगी। तो इसको कृपया ध्यान रखिएगा। हम पहले बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को देखते हैं। अब पहली लाइन वो क्या बोल रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं जो फेथ है, श्रद्धा है, वह सत्वगुण का कार्य होता है। और दो फेथ इट सेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ सत्वगुण। प्रभुपाद जी भी इस बात को अपने तात्पर्य में समझाएंगे, शुद्ध सत्व कह सकते हैं, लेकिन वह फेथ तीन गुणों के संग के कारण जो कि उसके अंतःकरण को प्रभावित करते हैं। अंतःकरण मतलब सत्व हो गया, अंतःकरण आपका मन बुद्धि अहंकार, इसको या अंतरण का मतलब हो गया मन बुद्धि अहंकार और चित्त। ठीक है, जैसे कोई कहेगा कि भाई भागवत क्लास बड़ी अच्छी लग रही है, तो उसका मतलब है उसका सत्व शुद्ध है। और कोई कहेगा भागवत क्लास गीता क्लास क्या है, क्या करना जाकर, तो उसका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ। ये मतलब नहीं कि वो सुन नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं बोल रहा हूं कि सुन नहीं सकता है, लेकिन स्वाद तब आएगा जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। माइक दीजिएगा उनको। ये कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना आपको, कि अंतःकरण जो है उसके अनुसार, अंतःकरण किससे प्रभावित होता है, गुणों से, और गुणों के कारण हृदय में श्रद्धा उस प्रकार की होती है।
आपने कहा है कि अगर वो भागवत कथा सुन रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो सत्वगुण में है, अच्छा लग रहा है।
यस यस,
लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको क्या कहा जाएगा?
नहीं नहीं,
पॉइंट उसको समझ में
नहीं, नहीं ऐसा नहीं है,
याद नहीं रह पा रहा है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर सात्विक हो गया है तो उसको याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा, तभी तो टेस्ट लगेगा। थोड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब इससे मैं भागवत के श्लोक को लेना चाहता हूं, जब सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। इसका अर्थ क्या है समझते हैं, कान को बहुत अच्छी लगेगी कथा और हृदय में जब आप उसके अर्थ पर विचार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब कब होगा, जब हमारा सत्व शुद्ध होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप देखिए शुरुआत में हमें कथा समझ में नहीं आती है, ये भी याद नहीं रहता क्या बोलते हैं, धीरे धीरे करके अरे प्रभु जी ने वो बात बोली थी, अरे क्या बात बोली थी, तो वो सुन सुन करके याद कर करके हृदय को बहुत सुख मिलता है। शुरुआत में क्या लगता है, गीता क्लास के बाद मन शांत हो जाता है। अपनी महसूस इतना ही महसूस करते हैं कि भागवत क्लास के बाद मन शांत हो जाता है, कुछ लोग को नींद ही आती रहती, कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके उसके जो अर्थ हैं वो शब्द पकड़ में आते हैं, शब्द पकड़ में आ रहा, वो बोला था, अच्छा ये बोला था, अच्छा ये बोला था, तो फिर वह बातें आपको हृदय को भी बहुत सुख देती हैं। जैसे आप उसको भौतिक शब्द में समझ लीजिए, जिन लोगों की भौतिक वार्ता में बड़ी रुचि होती है तो कान से बड़ी अच्छी लगती है उनको, उसके बाद वही चीज बार बार रिपीट करते रहते हो क्योंकि उनके हृदय को वो बात अच्छी लग रही है। Make sense? ठीक है। Yes? तो ये मैं पहले पॉइंट पे वापस ले आता हूं। सत्व बात समझ में आ रही है, जो हृदय है वह सत्व जो है वह गुणों से प्रभावित है, इस कारण से उसकी श्रद्धा इस प्रकार की है। हाँ जी,
पहला लाइन जो बताएं कि जो श्रद्धा है वो सत्वगुण का, सत्वगुण की वृद्धि है, तब तो ये आत्मा का कैसे हुआ?
देखिए जब सत्वगुण बोला जा रहा है मतलब शुद्ध सत्व, श्रद्धा जो है ये आत्मा का गुण है, एंड रियली आत्मा शुद्ध सत्व से ऑपरेट करती, तो वहां से श्रद्धा शुरू होती है। श्रद्धा को कभी भी हम भगवान से, भक्त से, सॉरी आत्मा के से नहीं निकाल सकते, विश्वास हमेशा हर आत्मा का रहता है। ऑब्वियसली अगर आप पेड़ों की बात करेंगे तो उनकी कोई श्रद्धा नहीं कह सकते, विकसित नहीं होती, लेकिन विकसित चेतना वाले व्यक्तियों की श्रद्धा होती है, ये बात होती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो अभी तक यही है, उसके आगे आप कहीं रिसर्च कर सकते हैं।
सत्वगुण की वृद्धि करते तो
देखिए जहां पर सत्वगुण की बात आ रही है तो उसको टेक्निकली यही समझना चाहिए कि शुद्ध सत्व, जो शुद्ध चेतना की बात आ रही है, फिर अगर बाद में मिक्सचर जो होगा वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर होगा, यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक। तो ये कह रहे हैं कि जो सत्व है वह तीनों गुणों से भरा रहता है और उसके अनुसार जीव की श्रद्धा होती है। तो समझ में आ रहा है बहुत आसानी से, समझ में आ रहा है? ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जो आंतरिक अंतःकरण है वह अगर सत्वगुण से उसका मतलब कह सकते हैं प्रेडोमिनेंस है, प्रेडोमिनेंस का मतलब अधिकता है, तो सात्विक श्रद्धा होगी। अगर रजगुण से होगी तो उसका सत्व राजसिक कहा जाएगा, और अगर तामसिक श्रद्धा हो का सॉरी प्रभाव अधिक होगा तो वह तामसिक कहा जाएगा। ये बहुत समझते हो, आप नहीं समझते हो, जब हम किसी को बोलते हैं तामसिक व्यक्ति, इसका अर्थ क्या हो गया? अब उसकी श्रद्धा जो है, उसका अंतःकरण है वो मुख्यतः तामसिक है। ऐसा नहीं कि इसमें कभी कोई सत्व या रजोगुण नहीं आता, लेकिन मुख्यतः वो तामसिक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंकरेजिंग बात है कि कोई व्यक्ति प्राय सात्विक है और कभी कभी तमस से प्रभावित हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह नीचे जाएगा। ये रिपीट कर रहा हूं बात, जब बोलते हैं कि सात्विक व्यक्ति ऊपर जाते हैं, देवताओं के लोक में जाते हैं, अर्थात सात्विक लोग कभी कभी अगर तमस से प्रभावित हो जाए, रजोगुण से प्रभावित हो जाए, तो ऐसा नहीं वो नीचे गिर जाएंगे। समझ में आया? प्राय सात्विक रहते हैं इसलिए ऊपर जाएंगे, कहने का अर्थ है। ठीक है
प्रभु जी,
माइक दीजिए इनको, लेकिन इसमें रिकॉर्ड नहीं होता ना, वहां पर इसमें जो भक्त लोग सुन पाएंगे, ये माइक पकड़ते नहीं कोई साउंड, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो। यस,
ये अगर ये बोला जा रहा रजोगुणी श्रद्धा, तो रजोगुणी श्रद्धा का यहाँ पे क्या अर्थ है?
अर्थ है कि वह श्रद्धा या उसका जो चित्त है वो रजोगुण से प्रभावित है, फिर उसको हम प्रभाव के रूप में देखेंगे, किसकी पूजा करना अच्छा लगता है उनको, उसका सत्व जो है रजोगुण से प्रभावित है और इस कारण से वह किसी विशिष्ट देवता की पूजा करना चाहता है, यक्ष रक्षांस जी राजा,
उसका मन चित ये सब
उधर भागेगा, उसका मन उधर भागेगा।
अच्छा, तो यानी कि उन लोगों का संग करता है, उन तरह के लोग संग करता है,
उन लोगों का संग करेगा, उस प्रकार के देवताओं की पूजा करेगा।
ठीक
है, ठीक है। अभी आप ये देखो सिंपल सी बात कि भगवान का नाम जप करने से इतना लाभ हो जाता है तो लोग इतनी तपस्या क्यों करते? आपने देखा है ना, वो क्या बिहार में कुछ बम्बोले होते, क्या बोलते हैं उसको, देवगढ़, यस देवगढ़ जाते हैं, बड़ी मेहनत करते देवघर, हाँ कांवरिया बोलते हैं। आप कहेंगे भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, हरे कृष्ण जप करे, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान का धाम चला जाएगा, लेकिन वो नहीं होता लोगों से। 18 दिन पैदल जाएंगे, सोते भी नहीं, वो उसको 100 किलोमीटर जो पैदल जाते हैं, बताइए कितना आश्चर्य की बात है ना। तो आप वही से उठा सकते हैं श्लोक की, उनको अभी बहुत शुद्ध होना है तब जाकर के वह भगवान की भक्ति के अधिकारी बनेंगे, नहीं तो भक्ति करना क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि अयम पुरुषा, इस प्रकार का जीव जब इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त होता है, श्रद्धामय होता है, तो वह विभिन्न प्रकार के विषयों के प्रति पूजा की वृत्ति को रखता है, देव यक्ष और प्रेत, और उन प्रकार उनकी पूजा करने से वह उस प्रकार की गुणों से युक्त हो जाता है। मतलब जिसकी राजसिक सात्विक श्रद्धा होगी वह देवताओं की पूजा की प्रति आकर्षित होगा, और राजसिक होगी तो यक्ष राक्षस, और तामसिक होगी तो भूत प्रेत, और जब उनकी पूजा करेगा तो उनके गुण उसके जीवन में और आ जाएंगे। हाँ प्रभु जी आप पढ़िएगा, कंटिन्यू करिए, उसका तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है।
ये क्लियर है, हम सब जान लिया था। यस,
लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम यानी सतोगुणी, राजस यानी रजोगुणी अथवा तामसी कहलाती है।
ये समझ में आ गया, समझाना है आपको, समझ में आया? मधु से समझाइए इस लाइन को।
उसने जो गुणों का संग किया है उसके कारण जो उसका स्वभाव बना है,
गुड,
उस स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा अलग अलग हो जाती है।
वेरी गुड, और स्वभाव का अर्थ क्या है? ये आपने कल समझाया था, इसलिए आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी स्वभाव कौन से कौन समझा सकता है? ये चीजें बार बार बोलिए तब समझ में आएगा स्वभाव का मतलब क्या है। देखिए रिलैक्स, हाँ ओके, ये बताएंगे स्वभाव का अर्थ क्या है, लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। ये पकड़िए स्वभाव, स्वभाव और स्वरूप ये दोनों में अंतर है। स्वरूप आत्मा की वृत्ति है, वो जीव का निश्चित दत्त दास है। स्वभाव क्या है? ये हमारा कंडीशन नेचर है जो हमें गुणों के संग के कारण हमारा ये स्वभाव बन जाता है। यस,
स्वभाव का अर्थ होता है सत्व।
स्वभाव सत्व से उत्पन्न होता है, स्वभाव का अर्थ सत्व नहीं होता है, सत्व के अनुरूप हमारा स्वभाव होता है, स्वभावज, और हमारा सत्व जो है वह गुण के अनुसार। जैसे लोग कहते हैं ना इसका गुस्सैल स्वभाव है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका मन अंतःकरण रजोगुण से प्रभावित है, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देख लीजिए, यहाँ जितने भी उपस्थित भक्त हैं और जो कल आप प्रश्न कर रहे थे, आप जब लोगों को देखें तो ये जरूर देखिए कि स्वभाव का प्रेशर बहुत है। जब आप किसी को देखें कि भाई वो इस प्रकार से ठीक से तुरंत भक्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक से एकदम हाई स्टैंडर्ड पर नहीं आ पा रहा है, उसका अर्थ क्या है? अनादि काल से जो फंसा पड़ा है, जो संस्कार उसका है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए बस ये देखना चाहिए कि वो भक्ति में लगा हुआ है। वो भक्ति में लगा रहेगा तो धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण सत्वगुण का भाव नष्ट होगा और उसका रियल स्वरूप जो है कृष्ण के दास के रूप में वो प्रकट हो जाएगा। खुद अपने ही जीवन में आप देखेंगे कि हमारा स्वभाव के कारण हम लोग को भक्ति में बड़े कष्ट आते थे शुरुआत में, पर्टिकुलरली शुरुआत में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उस समय हमको पता भी नहीं रहता था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ये आप महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, मैं गलत हूँ, सही है। हम लोग आप देखेंगे भक्ति कर अच्छे से करते रहेंगे तो सेंसिटिव होते चले जाते हैं। नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम सही कर रहे हैं हमेशा। तो ये स्वभाव को हम देख पाते हैं कि भाई मैं स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा हूँ, तो फिर आप धीरे धीरे करके व्यक्ति उससे अलग हो पाता। बस सूक्ष्म चीजें हैं, आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा स्वभाव क्या होता है। यस, तो एक और पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से स्वभाव से युक्त होकर के पूजा पाठ कर रहा है, उसकी मैं निंदा नहीं करना चाहिए। समझा सकते हैं ये भगवान कृष्ण भगवान है, लेकिन आप ये ध्यानना चाहिए कि उसकी श्रद्धा वो पूरी तरह प्रभावित है। आपके बोलने से कुछ ज्यादा होगा नहीं, बता दीजिए, भगवान का नाम दीजिए, भगवान का प्रसाद दीजिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए, धीरे धीरे करके स्वीकार कर पाएगा। पढ़िए आगे।
इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है।
ये भी चर्चा कर ली थी हमने अभी कि उसकी वैसी श्रद्धा होगी, उसे वैसे लोग पसंद आएंगे, फिर वैसे लोगों का संग करेगा, वैसे लोग वैसे वैसे पूजा स्वीकार कर लेगा। यस।
अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है।
ओके, यानी कि स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास के रूप में। स्वभाव क्या है? अभी देखो, मैंने पूछा प्रश्न, स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास। स्वभाव क्या है? गुणों के अनुसार। बहुत सुंदर, आप समझ रहे हैं आप लोग, आगे पढ़िए।
लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है।
ये तो स्पष्ट, आप समझ में आ रहा है? हाँ, तो बहुत क्लियर है। यस।
इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं।
अमेरिका से आपका उत्तर हो गया होगा प्रश्न का कि ओरिजिनली जो श्रद्धा है वो जीव की, वो शुद्ध सत्व की श्रद्धा है और वह कृष्ण के तरफ डायरेक्ट होती है। ये स्पष्ट देख रहे हैं, जैसे जैसे आप हरि नाम कर रहे हैं, हमारा सत्व शुद्ध होता है, तो हमारे हृदय में क्या इच्छा आती है? मैं अधिक कृष्ण की सेवा करूं। क्यों भाई, आती कि नहीं आती? और रात के समय किसको अनुभव होता है कि आज मैंने कुछ किया नहीं खास कृष्ण के लिए? आपको लगता है सिमरन जी ने बहुत ज्यादा सेवा कर दी? अरे किसी, जब आपको मन में ये लगने लगे मैं तो कुछ खास किया नहीं कृष्ण के लिए, हमेशा कुछ भी आप पढ़े आप जितना सेवा करें और आपको लगे कि कुछ हुआ नहीं, हाँ कुछ टाइम चला कि कुछ हो नहीं रहा है, तो यानी कि अब ये आपकी लालसा कृष्ण की सेवा करने की बढ़ रही है। वैसे हो सकता हो कि वाकई कुछ भी ना किया हो सकता है, लेकिन रियली प्रेम बढ़ने का स्तर है कि इसको बहुत सुंदर अभी श्लोक तो मुझे याद नहीं, चैतन्य चरितामृत में आ रहा है, भगवान कह रहा है कि मेरे भक्त मुझे प्रणाम करते हैं, मेरा नाम जप करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं होते। और इसको आप भगवद गीता में देख सकते हैं, अर्जुन को थोड़ी देर पहले बाद में युद्ध करना है, दसवें अध्याय में क्या बोलते हैं, आप अपनी महिमा सुना रहे हैं, मुझे तृप्त नहीं हो रहा, और सुनाइए। जैसे कि परीक्षित महाराज, ये सब जो है शुद्ध श्रद्धा का लक्षण है। जितनी भक्ति करेगा उसकी लालसा और बढ़ रही है, और सेवा करने की बढ़ रही है। तो ये बाकी लोगों की जो नहीं हो रही है, मतलब जो तो गुणों से प्रभावित बात है। हम देखो, एक बात है ये हमें जानना चाहिए कि ये हमारी वास्तविक स्थिति है। जब तक हम इस स्थिति को नहीं प्राप्त कर लेते, हमको बैठना नहीं है। कृष्ण प्रेम की स्थिति, लालसा की स्थिति, यानी हमारे हृदय में ये प्रेम है और जब तक प्रकट नहीं होता है तब तक हमें छोड़ना नहीं, पीछे नहीं हटना कभी, क्योंकि ये गोल तो हमें प्राप्त करना ही है। क्यों दशरथ जी, प्रभु आपका मेरे से कोई कॉम्पिटिशन है क्या? मेरा आपसे कोई कॉम्पिटिशन है क्या? किसी का कोई कॉम्पिटिशन है भक्ति में? विपरीत है, अगर मुझे भगवत गीता समझ में आती है और मैं किसी की मदद करता हूं तो मेरी भक्ति बढ़ जाती। कितना अद्भुत है ना प्रोसेस।
कंपटीशन तब होता है जब सिर्फ एक होता है,
हाँ कंपटीशन तब होता है जब सीट एक हो वहां हमारी सबकी सीट खाली पड़ी है, हमें तो वापस आके बैठना है बस, है कि नहीं? कोई कंपटीशन नहीं है, कितना सुंदर मार्ग है भक्ति का, कोई कंपटीशन नहीं, उदारता का मार्ग है। तो मैं खाली ये बोला था ये सारी श्रद्धा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, मैं इसको और तरह से समझाऊंगा। अब आप लोग माइक पे उत्तर दीजिएगा, अपने पापा को आप पापा मानते हैं? नेचुरल उत्तर दीजिएगा, स्वाभाविक उत्तर। अपने पिताजी को पिताजी मानते कि नहीं मानते? अब ये कृत्रिम आरोपण है कि नहीं है? अब समझ में आ रहा है ना? और ये हुआ कैसे था?
सुनने से।
वो बार बार जब बचपन थे बोलो बड़ा पापा 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 करते करते हमने छाप मान ली कि हमारे पापा हैं।
पापा कहते हैं ख्याल आ जाता है।
हाँ पापा, हाँ यस, पापा कहते ही ख्याल आ जाता है कि पापा कौन है, और पिछले जन्म के पापा कौन है कुछ याद नहीं रहता। तो आप देख रहे हैं ये है कृत्रिम आरोपण, ये है कृत्रिम श्रद्धा। उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे अर्जित कर ली है ये उपाधि कि ये मेरे पापा हैं, उसी प्रकार से हमने अर्जित किया हुआ है ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण,
मतलब
बनावटी। यस, असली पापा तो हमारे कृष्ण हैं, और उसको वो रिवील होता है, प्रकट होता है, वो भी ध्वनि के माध्यम, शब्द के माध्यम से। ठीक है, ओके पढ़िए।
भले ही इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध के द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी को भी आप प्रचार करें चाहे व्यक्ति कितना भी खराब दिख रहा है, ये ध्यान देना चाहिए कि अंदर से तो वो हीरा ही है, कृष्ण का अंश है। हम उसके खराब स्वभाव से हमको डील करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि मूलतः वह कृष्ण का दास है, अगर भक्ति करता रहा तो आगे आ ही जाएगा। पढ़िए।
अतएव भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमस से शुद्ध होना पड़ता है, यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पद को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है।
पढ़ी पढ़ी पढ़ते आई।
इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है।
इससे पहले हम एक चीज चाहिए, अगर रियली भगवान के भक्तों के संग में ही इस श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा बढ़ती है, तो अगर हम इस रेगुलरली श्रद्धा को बढ़ाने वाले कार्य नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से हमारी श्रद्धा रजोगुण तमोगुण के कारण बह जाएगी। सुंदर बात गोड़ाकेश प्रभु ने बोली थी बहुत, कि जितने मैनेजर हैं उनको श्रवण कीर्तन जरूर करना चाहिए। श्रवण कीर्तन के अभाव में अपराध होना स्वाभाविक है। एकदम से हम तुरंत उस किसी व्यक्ति को बस ऐसे ही देखते हैं जैसे वो शरीर में दिखते हैं, जैसे आप, मैं आपको देख पा रहा हूं। इन्होंने बोला हाँ देखिए, क्या आप मेरे को देख पा रहे हैं? हाँ। मधुशेष प्रभु आप मुझे देख पा रहे हैं? बोले हाँ। दशरथ प्रभु आप मुझे देख पा रहे हैं? कितना अद्भुत है, एक भी व्यक्ति सही उत्तर नहीं दे रहा है।
मैं नहीं देख सकता।
कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं देख रहा है। क्या मैं अपने आप को देख पा रहा हूं? नो,
दूसरे
मायने में नहीं। आप देख रहे, देख रहे, आध्यात्मिक चर्चा हो रही है। कितनी अद्भुत बात है ना, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं? एक भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा, जिसको भी आप सोचते हो कि आप, वो आपको पसंद नहीं, उसको देख पा रहे हैं आप? कितने आश्चर्य की बात है। और हमारा मन उस पर पूरी तरह अब्सॉर्ब हो जाता है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये व्यक्ति मेरा दोस्त है, जबकि उसको देखते ही नहीं, और फिर निंदा भी चालू कर देते हैं, एक दे ऐसा है, वैसा है, ऐसा करके। तो हम जब श्रवण करते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर होती है कि हम इन गुणों के प्रभाव में ना बह जाएं। मेक सेंस? दिस इज वेरी वेरी सटल पॉइंट, स्पष्ट है ना? आप नहीं देख पा रहे ना मेरे को, यही सब आप कहेंगे, ये सब क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को नहीं देख पा रहे आपको, तो आप तो दिख रहे हो। नहीं, आप मेरा केवल शरीर देख रहे हैं। यस, अब आपने एक बहुत अच्छी बात बोल दी, इन्हें बोला कि प्रसाद हम सर्विंग कर रहे हैं, तो हम किसकी सर्विंग कर रहे हैं? हम शरीर की सेवा कर रहे हैं कि आत्मा की सेवा कर रहे हैं? तो महाराज जी से हमारे गुरु महाराज बोले इस पे, शरीर के माध्यम से आप आत्मा की सेवा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात। शरीर के माध्यम से आप आत्मा की सेवा कर रहे, ठीक है। इसलिए नहीं कह सकते कि आत्मा की और शरीर की जरूरत नहीं है या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, शरीर की भी सेवा करना चाहिए, लेकिन शरीर के साथ साथ आत्मा की भी सेवा होनी चाहिए। पढ़िए आगे।
श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है।
क्या सीखा आपने? हमने ये सीखा कि जो सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम है बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति मॉर्निंग प्रोग्राम में अब तक अच्छे से कर रहे हो, मैं ढिलाई देगा, उसकी श्रद्धा कम हो जाएगी। श्रद्धा कम हो जाएगी तो ऐसा समझिए कि मोटरसाइकिल तो है लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो क्या कीजिएगा, समझ रहे ना, तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है सुबह के समय को हम लोग उपयोग करें भगवान की सेवा में। यस, पढ़िए।
किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता
है। बहुत सुंदर बात है। जो भगवत तत्व है वो समझ में आता है जब हमारा चित्त इस प्रकार से गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाए। जब बार बार कोई प्रश्न करे कि भाई नाम में कितनी शक्ति है, हम कैसे समझेंगे, क्या होगा, तो ये तभी समझ में आएगा जब हमारा शुद्ध सत्व हो जाए, स्थित होंगे। भगवान की महिमा ऐसे समझ में नहीं आती, ऑब्वियसली उसमें भी ऐसा नहीं कि आप पूरा समझ पाएंगे, लेकिन रिवीलेशन जिसे कहते हैं ना, भगवान के महिमा का प्राकट्यकरण, वह शुद्ध सत्व में ही होता है। पढ़िए।
जब तक श्रद्धा पूर्णतया सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित।
बहुत सुंदर। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या इस सफेद रोशनी को बंद करके पीली की रोशनी ऑन कर सकते हैं? आप कर सकते हैं? अरे नहीं, क्या कर सकते हैं, बोल रहा हूँ करने के लिए, करके दिखाई। हर चीज कोई सिद्धांत ना होता है, वो फिलॉसफी नहीं होती। अब आप देखिए, रिलैक्स। अब आप देखिए, ये जो रोशनी है इसने इस पूरे रूम को व्याप्त कर लिया कि नहीं कर लिया? अब आप फिर इसको ऑफ करके सफेद रोशनी ऑन करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। तो अब आपने देखा किस प्रकार से जब रोशनी वो जानना चालू हुई, अब ये मान के चलिए पीली रोशनी जो है ये सत्वगुण है। अगर ये ऑन हो रहा है तो पूरे रूम में आप पीली रोशनी का अनुभव कर रहे थे। पीली इसको ऑफ कर दीजिए, आपने अपने व्हाइट ऑन करना चालू किया तो उस समय पूरा व्हाइट रोशनी का प्रभाव हो रहा है पूरे रूम में, समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से गुणों का प्रवेश होता है हृदय में। जैसे देखिए आप अपने चित्त को देखना, सुबह आप उठते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है स्नान करके, फिर आपका मन करता है जप करने के लिए, होता है कि नहीं होता? तो ये सत्वगुण आपके चित्त में प्रवेश कर रहा है कि नहीं कर रहा? फिर जैसे ही सूरज उगता है फिर देखिए कैसे मन में विचार आते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। इसीलिए जो लोग सुबह नहीं उठते, सुबह उठ के जप नहीं करते, पूरा नहीं करते, उनको जीवन में बड़ी कष्ट आती है। जो मेडिटेशन का समय है, ध्यान का समय है, सत्वगुण के कार्य है, वो रजगुण के कार्यों में करते। आप देखिए अगर दिन में क्लास होती है तो उतना अच्छा नहीं लगता, महसूस किया कभी? दोपहर में क्लास हो नहीं मन करता, क्योंकि इस वक्त मन काम करने का करता है, बहुत सारे कुछ भी काम हो। हाँ, इसीलिए सुबह शाम को फिक्स किया गया कि व्यक्ति फिर शाम को आकर स्थित हो सत्वगुण में और फिर भगवान फिर ऐसे प्रकार से तमोगुण में जाकर के फिर सुबह उठ जाए। अगर इस प्रभाव को हम देख लेंगे तो हमारा भक्ति के जीवन सुखी सुखमय होगा। पढ़िए आगे। यस, दीजिए माइक दीजिए इनका।
अभी सर हमारी श्रद्धा
ऑन कीजिए और माइक पे बड़ी आवाज आनी चाहिए। यस,
हमारी जो श्रद्धा है अभी मन बुद्धि अहंकार अभी आध्यात्मिक नहीं है, तो क्या चेंज हो जाता है?
यस, भगवान का नाम जप करने से और क्या नाम से भगवान की कथा सुनने से सत्वगुण में आता है, तब अनुभव होता है। प्रभुपाद जी इसी बात को बोलते थे कि अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करोगे तो श्री विग्रह वो गल गृह बन जाएगा, समझते हैं इसका, गलगृह मतलब गले का फांस, वो कृष्ण ही है, लेकिन क्योंकि मेरा शुद्ध जो कह सकते हैं जो सत्व है वो शुद्ध नहीं है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं छोटा सा लीला बता दूंगा आपको, महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे जगन्नाथ रथ यात्रा में, तो उनके बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि ये साक्षात भगवान है, तो उनको विश्वास हो गया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रताप रुद्र जी को साक्षात्कार नहीं था कि भगवान है, लेकिन उन्होंने गुरु की बात को स्वीकार किया। लेकिन उसमें महाप्रभु के मुख से लार निकल रही थी और मिट्टी उनके पूरे शरीर में लगी हुई थी, तो वो लौट रहे थे जीवन, तो उनको थोड़ा सा डाउट हुआ ये भगवान है। तो फिर रात में उनको सपना आता है, जगन्नाथ जी के विग्रह से स्वयं महाप्रभु बाहर आ रहे हैं, और फिर वही रूप, पूरा जो शरीर है उनका वो धूल धूसरित है और उनके यहां से लार निकल रही है। तो फिर उनको आलिंगन करने के लिए वो दौड़ते हैं महाप्रभु प्रताप रुद्र जी सपने में, तो महाप्रभु कहते नहीं तुम मुझे क्यों छू रहे हो, देखो मेरा शरीर कितना पवित्र है। तब उनको समझ में आ गया कि महाप्रभु और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं। अब इस प्रकार का दिव्य अनुभव प्राप्त हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमको कहीं ना कहीं बाह्य रूप से हमें संदेह हो सकता है, क्योंकि हम लोग देव स्तर पर नहीं है। अगर कल कृष्ण बलराम जी से बात करने लग जाए तो डाउट रहेगा कि कृष्ण बलराम और विग्रह में कोई अंतर है, लेकिन बात नहीं अभी कर रहे हैं, तो हमको शास्त्र की श्रद्धा सुन करके, प्रभुपाद जी की बात सुन करके, प्रभुपाद जी से बोला गया था आप इतना मंदिर दूर क्यों बना रहे हो, तो बोले जहां कृष्ण होंगे वहां सब लोग आएंगे। क्या सब लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा पुख्ता होनी चाहिए कि नहीं हम नहीं जानते, प्रभुपाद जी जानते हैं, कृष्ण बलराम साक्षात है। प्रभुपाद जी हमेशा बोले आपकी कोई तकलीफ है आप कृष्ण बलराम जी से बात करिए। सो अगेन इट डजंट मेक सेंस टू यू एज अ कंडीशन सोल, टू मी, टू ऑल ऑफ अस, लेकिन हम बद्धात्मा होने के नाते हम उसको समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे गुरु की बात सुनते सुनते हम शुद्ध हो जाएंगे तो ये बात हमें अनुभव भी होंगी। इसे कहते हैं दिव्य प्रत्यक्ष, और इसी बात को भगवान गीता में बोलते हैं प्रत्यक्षावगम धर्मयम। फिर आप समझो, ये बहुत अच्छा बात आपने प्रश्न करी है कि भाई हम अगर हरि नाम कर रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि इसका जो प्रभाव शाश्वत होगा, कैसे मालूम चलता है? शास्त्र के द्वारा। हमें कुछ अपनी बद्धात्मक माया से मुक्त जीव को कुछ नहीं पता भगवान के बारे में। तो जब बोल रहे हैं कैसा भी चित्त हो सुने, सुनना इसलिए बहुत जरूरी, सुने सुने सुने, रोज सुने, ऐसे रोज खाना जरूरी, ऐसे रोज सुनना जरूरी। चिंता होती है ना, मान लीजिए दोपहर में लंच नहीं मिले तो रात में आज मूडी आएगी कि कुछ आएगा, चिंता होती है ना। तो इसी प्रकार से शाम को भी सुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगले दिन सुबह खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। माइक दीजिए उनको। यस,
एक छोटा 3 साल का भतीजा है, अब टीवी पे इतना अंकल चिप्स अंकल चिप्स, तो 3 साल का बच्चा भी वो सुन सुन के मांगने लगा अंकल चिप्स लेके आओ अंकल से, तो सुनने का इतना प्रभाव होता है।
yes.
कि छोटा बच्चा भी बार बार सुन के उस चीज को डिमांड, वो जानता कुछ भी नहीं है लेकिन वो समझ गया कि मेरे लायक का चीज है।
जो भी नीड क्रिएट होती है कि आवश्यकता ही है, ये सब सुन के होती है। और आप देखेंगे कि जो एकदम बिल्कुल आवश्यक चीज नहीं है वो सुन सुन करके हम लोग कन्विंस हो जाते हैं, नहीं ये तो बहुत जरूरी, ये तो होना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से जैसे मैं अभी रागानुगा भक्ति के बारे में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज सुन रहा, हम क्या रागानुगा है, कुछ नहीं है, हम तो कामानुगा है अभी, लेकिन हृदय में इच्छा आ जाती है कि कभी तो स्तर प्राप्त हो, है कि नहीं? जब सुनेंगे ही नहीं तो लगेगा हाँ चल रहा है ना। अब तो जब देखेंगे हरिदास ठाकुर जी की इतनी भक्ति है, इतना नाम कर रहे हैं, कब वो दिन आएगा कि पूरी रात में नाम करूं और मुझे मालूम ही नहीं चले। मैं उदाहरण दे रहा था, पूरी रात सोते हैं मालूम चलता है कि पूरी रात बीत गई आज अच्छा ये लगता है कि आज की रात जरा थोड़ी छोटी थी, मैं जल्दी खत्म हो गई। ऐसे एक दिन हरि नाम में कब आएगा वो दिन, है ना? तो सुन के ही आता है ना, सुन के ही आता है, तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। यस पढ़िए, पढ़ लीजिए।
प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, तो किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुण है, सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है।
एकदम स्पष्ट है, कुछ समझाना है? किताब तो खोलिए।
इस
हृदय का मतलब वही हो गया सत्व, मन बुद्धि अहंकार चित्त।
Yes. इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार के श्रद्धालुओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं।
एकदम क्लियर समझ में आ गया? अगर भगवान एक हैं तो अलग अलग धर्म क्यों हैं? क्योंकि सबका सत्व अलग प्रकार का है, उस प्रकार से वो आकर्षित होगा। बहुत स्पष्ट उत्तर है, कितना क्लियर उत्तर है, और आप ये नहीं कह सकते सब एक बराबर है। Yes.
धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतएव किसी विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न प्रकार की होती।
छोटा सा एक पॉइंट है, भागवतम में जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय के आखिरी भाग में बोलते हैं कि जो मुमुक्षु वो घोर रूपान, ऐसे करके श्लोक आता है। तो जो अलग अलग, अभी नेक्स्ट श्लोक में आप पढ़ लेंगे, कल अगर हम पढ़ेंगे तो, कि लोग विभिन्न प्रकार के भयानक रूपों से वो आकर्षित होते हैं यक्ष राक्षस इत्यादि के द्वारा, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो सत्वगुण में स्थित होते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते, जानते हैं कि उनके सत्व के अनुसार वह इस देवता के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, उनकी कोई निंदा नहीं करते। ठीक है, अकेली सिद्धांत असली कहा लिखा है, असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित रहता है। ओके, धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत अर्थ मतलब जो व्यक्ति सत्वगुणी होगा वह भगवान विष्णु की पूजा करेगा। सिद्धांत फिलॉसफी कह लीजिए, कंक्लूजन कह लीजिए कि किसकी पूजा करनी चाहिए, तो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, वही उपास्य हैं। तो जो सत्वगुणी होंगे वो उस प्रकार की पूजा के प्रति आकृष्ट होंगे। ठीक है, चलो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।